भाव जी उन गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आओ बैठ। मठ से आ रहा है? मठ में गया था तो ठीक कह रहे हैं। ये लोभनीय बात क्या? और जी गोस्वामी इसकी व्याख्या कर रहे हैं कितना सुंदर। जिनको ये सब श्रवण का रुचि नहीं है ना, उनके जैसा दुर्भागा जगत में कोई नहीं जन्मा। विश्वेश्वर के महाप्रभु की परंपरा में आकर के भी इन कथाओं से जो रह गया है अच्युता, उनके जैसा दुर्भागा विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं जन्मे। गंगा नदी के किनारे बैठ करके प्यास लगी, वो कहे भाई कुआं कहाँ है इधर? खारी कुआं का वहीं कुआं वहाँ है, पानी पियेंगे? अरे भाई गंगा जी में पानी पी लो। नहीं नहीं, ये तो चरण से निकली हुई है ना, ये पानी हम नहीं पीते, ये भोग में नहीं लगेगा। जगन्नाथ जी के भोग में नहीं लगेगा गंगा जी का पानी, नहीं लगाते।
नहीं गंगा जी में है, स्कंद गंगा जी में, लेकिन नामपुरा एक दूर कुआं है, हम क्या कहन मालूम है, मना करते जगह
भोग। ये कुएं का पानी लेकर के ठाकुर जी का भोग बनेगा, वहां पर भी है कुआं जहां पर तीर्थ जाता है मंदिर में, और यहाँ पर भी कुआं है। गंगा जी का पानी कोई पानी लाए तो देगा, वो नहीं लेंगे। कहे अरे ये तो चरण का धुआ हुआ जल नहीं। उनके समान जगत में कोई दुर्भागा नहीं है।
तक्ता जन्नवी तीरम कुपम कांचन्ति दुर्भागा।
इसलिए एक श्लोक को लिया है, लिया है तो चार पांच। अब एक श्लोक की व्याख्या भी यहाँ पर पूरी आज होगी कि नहीं, अभी तक तो हमने भूमिका में कहा, अब आगे चलते हैं। वह श्लोक है, कह रहे हैं ए ताह परम तनुखितो भुवि गोप बुद्धो गोविंद एव अखिलात्म निरूढ़ भावा वांछन्ति जद भाव भियो मुनयो बयंच किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य। गोपियों की बहुत चुड़ांत महिमा इसमें बतला दी, जहां तक उद्धव जानते थे समस्त इस श्लोक में व्यक्त किया। कहते हैं
कौन किया है? जीव गोस्वामी ने किया।
उद्धव जी कह रहे हैं उसको जगत के जीवों को ये दे रहे हैं, वो भी महाप्रभु जी की कृपा पा करके। पृथ्वी में भूवी, वो मैंने पृथ्वी, इस पृथ्वी में जगत में जितने भी देहधारी जीव हैं शरीर को पाने वाले, उनमें ब्रज में गोपियों का ही जन्म लेना और उनका शरीर धारण करना सार्थक है, और इसके अतिरिक्त दूसरों का सार्थक नहीं। हम तो यही जानते हैं, परम माने सबसे श्रेष्ठ वही है गोपियां। क्यों? अरे अखिल जीवों के आत्मा हैं कृष्ण परमात्मा, भीतर में रमण करने वाले, कोई जाने और ना जाने हैं। तो बस जीवात्मा परमात्मा में अंतर कितना है? कोई अंतर नहीं, दोनों एक साथ में है, किंतु उपलब्धि नहीं। यदि उपलब्धि हो जाए तो अभी मुक्त हो जाए, किंतु आश्चर्य की बात एक साथ में रहते हुए कोटि कोटि अगिनत युग व्यतीत हो गए, अनादि काल हो गया, किंतु जी में से कोई कोई ऐसे लोग हैं जो उनको दर्शन मिल जाता है अपने कुंजी पर। तो गोविंद एव अखिल आत्मनी रूढ़ भावा, इस गोविंद के प्रति रूढ़ भाव, रूढ़ भाव माने रूढ़ भाव को समझने के लिए क्या चाहिए? आदव श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में जिसको निष्ठा उत्पन्न हो गई, सब अनर्थ दूर हो गए, रुचि हुई, रुचि से बढ़कर के आसक्ति हुई, आसक्ति के बाद में भाव आया, भाव के बाद में जिनको प्रेम हुआ, प्रेम के बाद में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, इसके बाद में रूढ़िये रूढ़ भाव। उन गोपियों का कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव है जो उद्धव तक को नहीं हुआ, जो कि सत्यभामा रुक्मिणी को भी नहीं हुआ और की तो बात क्या, यहां तक कि यशोदा मां जी को ये रूढ़ भाव नहीं हुआ, सखाओं को भी नहीं हुआ, अनुराग तक किसी का पहुंचा, किसी किसी की भाव की प्रथम अवस्था तक पहुंचा, मां भाव के अब छूते छूते अब छू रहे ऐसा हुआ है रुक्मिणी सत्यभामा का, किंतु पूरा नहीं, और कहां उससे ऊपर रूढ़ भाव कृष्ण के प्रति इन गोपियों का, इन्हीं लोगों का देह धारण करना और जन्म लेना पृथ्वी पर
सब सब।
गोपी माता कौन है?
हैं?
गोपी माता कौन है?
गोपी हुआ जन्म है, जैसे कृष्ण जन्म है नित्य काल है, वैसे उनकी नित्य काल की प्रियसी है, उनका कोई जन्मदाता नहीं, कृष्ण का जैसे जन्मदाता नहीं उनका, तब साधन सिद्धा जो है
किसी किसी से तो प्रकाशित नहीं है,
जो मैं आपके द्वारा समझ लीजिए। देखो उद्धव जी ये कह रहे हैं, ऐसा रूढ़ भाव जिसको मुक्ति चाहने वाले और जो मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो गए, मुक्ति चाहने वाला मैंने क्या,
मुमुक्षु,
हमको अब जन्म मरण न हो, इस जगत में आना नहीं पड़े, हमको किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक इत्यादि क्लेश न हो, या हम कृष्ण में मिल जाएं, ऐसी भावना को लेकर के जो साधन करते हैं उनको कहते हैं मुमुक्षु, मुक्ति की इच्छा करने वाला, अब मुक्त जो इनसे मुक्त हो गए और भक्त जो इनसे भी ऊपर हैं, जैसे अपने के लिए कह रहे हैं, ये तीन प्रकार के लोग जो हैं वो चाहते हैं ऐसा ही गोपियों जैसा रूढ़ भाव हो जाए और अभी तक नहीं हुआ, लक्ष्मी जी भी नहीं हो सका तो इन लोगों की क्या बात, लक्ष्मी जी अभी भी बेलवन में तपस्या कर रहे हैं, किस लिए, कृष्ण का वह प्रेम पाने के लिए, किंतु मिला क्यों नहीं, इसलिए कि नारायण में भी उनकी रुचि है कृष्ण में भी रुचि है, इसलिए नारायण में भी लगी हुई है, और नारायण को वो भगवान जानती हैं, कृष्ण को ग्वाला जानती हैं, और ग्वालिनी नहीं होना चाहती, इसलिए ये उनको ये प्रेम नहीं हुआ, ये उसी वंश का ही एकदम अथॉरिटी है, गोकुल में नहीं आने से कृष्ण का ऐसा प्रेम संभव पर नहीं है, हम लोग भी इसकी इच्छा करते हैं किंतु आज तक नहीं हुआ, तो उद्धव जी तो चाहते थे किंतु हुआ क्यों नहीं, उनमें दास्य भाव और कुछ सख्य भाव मिला हुआ है, किंतु है दास्य प्रधान सख्य, वहां पर यह भाव नहीं आएगा, गोपियों का जब तक अनुगत्य नहीं होगा, जिसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु, यही महाप्रभु की कृपा है, अनर्पित चरिं चिरा करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितम् उन्नत उज्ज्वल रसा, उन्नत उज्ज्वल गोपियों के ही भाव हैं, इसी को देने के लिए आए और विशेष चीज का स्वादन करने के लिए, तो कहते हैं हम लोग वांछा तो करते हैं, कामना करते हैं, किंतु होता नहीं, हम चाहते हैं हम प्रधानमंत्री हो जाए, हो जाएंगे थोड़े, हो भी सकते हैं, किंतु ये भाव होना बड़ा मुश्किल है, इस लोक की कहे ये महाभाव संपत्ति के अधिकारी केवल मात्र गोपियां हैं, जिन लोगों को हरि कथा में रुचि नहीं है तो इन गोपियों की महिमा कैसे सुनेंगे, हरि कथा के माध्यम से ही तो होगा, जहां चर्चा ही नहीं है इसकी, उनको लोभ क्या होगा, और लोभ नहीं होने से साधन क्या होगा, और साधन नहीं होने से उनको मिलेंगे कैसे, इसलिए जिन लोगों को हरि कथा में रुचि नहीं है पंडस्य श्रम, उनका जितना परिश्रम है बेकार का है, जो भी कुछ करते हैं, यदि हरि कथा में रुचि नहीं हुई तो गोपियों की महिमा कैसे जानेंगे, ब्रजवासियों की महिमा कैसे जानेंगे, कृष्ण इतने उदार भक्तवत्सल इतने समस्त गुणों के समाहार उनमें है, ये कैसे आदमी जानेगा, भागवत नहीं होता तो कोई समझता, महाप्रभु नहीं आते तो, रूप गोस्वामी नहीं आते तो लोग कैसे समझते, इसलिए कहते हैं कि जिन लोगों को हरि कथा में रुचि नहीं है ऐसा कोटि कोटि ब्रह्मा का जन्म लेकर के भी क्या लाभ? ब्रह्मा जी क्या करते थे? जगत की सृष्टि उनकी, यह बगीचा है विश्व, कितने सुंदर, कितना सुंदर इनका यह बगीचा है, उसमें कितने सुंदर सुंदर मनुष्यों को, नारियों को, पुरुषों को, और कैसे कैसे कर्म इत्यादि।
ब्रह्मा जी किसे किया? ब्रह्मा जी शक्ति संचार किया है, तब किया ना ब्रह्मा जी का।
ब्रह्मा जी का लाभ करके भी जन्म यदि इन कथाओं में रुचि नहीं हुई तो बेकार का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी ने खुद ही इस चीज को कहा। अब ये हमारे जी गोस्वामी जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं एता परम तनु भीतर, जगत में किनका देह धारण करना सार्थक है? एता परम, सबसे श्रेष्ठ गोपियों का ही जन्म लेना एकमात्र जगत में, इस पृथ्वी में, इस वृंदावन में सार्थक है, और जगह में नहीं। कहां पर? वृंदावन में गोपी के रूप में ही। गोपियां भी बहुत प्रकार की हैं, जो यशोदा मैया भी तो गोपी हैं, ये भी गोपी नहीं, कृष्ण की प्रेयसी जो गोपियां हैं उन्हीं का ही जीवन धारण करना और शरीर धारण करना सार्थक है। कौन कह रहा है? उद्धव जी। उद्धव जी कौन है? कृष्ण के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है।
हरिदास
कहते हैं कि ये उद्धव जी जैसे हमारे प्रिय हैं, शंकरसन भी हमारे प्रिय नहीं है, मेरे बड़े भैया। ब्रह्मा जी आत्मजोनी शंकर, आत्मजोनी ब्रह्मा और शंकर भी हमारे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी भी हमारी जो अंक में शामिल करने वाली है वो भी प्रिय नहीं है, यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी प्रिय नहीं है, इतने उद्धव प्रिय हैं। वो उद्धव जी यहाँ पर कह रहे हैं केवल परम मन, यहाँ पर केवल केवल गोपियों का जन्म लेना ही सार्थक है। उनकी कथाओं को जो कोई श्रवण करने की रुचि जिनमें नहीं है, उनका जीवन क्या हुआ?
बेकार।
उसी चीज को बतला रहे हैं। देखो अखिल आत्मा, अखिल जीवों के आत्मा परमात्मा है, जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे, तुम लोग मत सुनना, जीवात्मा परमात्मा एक नहीं है, जीवात्मा हम जीव हैं, और उनमें परम जो श्रेष्ठ है, जो सबका संचालन करने वाला है, वो परमात्मा है। ये परमात्मा है कौन? कृष्ण के अंश के अंश के अंश का कला है, कृष्ण का अंश नहीं, कृष्ण के अंश का कला है मात्र, ये परमात्मा जो हृदय में साक्षी रह करके सबके भीतर को जानता है, सबका संचालन करता है, पाप पुण्य इत्यादि का भोग कराता है, और यदि किसी की वृत्ति हुई जो मैं भगवान का भजन करूंगा, तब उसको वो ऐसी शक्ति दे करके उधर में भी ले जाते हैं, ये है परमात्मा। परमात्मा कृष्ण के अंश हैं, इसलिए इनको भी वैसा ही मान लिया, मान करके कहते हैं ये जो अखिल जीवात्माओं के आत्मा है, प्राणों के भी प्राण हैं, इनकी स्फूर्ति होना भी दूसरों के लिए बड़ा भारी कठिन है। स्फूर्ति माने क्या? जैसे जोगी लोग हजार वर्ष तक तपस्या की, किसी को एक थोड़ा सा एक झलक दे दिया, झलक दर्शन, एक जैसे वृंदावन में होता है ना झलक
झांकी दर्शन,
ऐसे झलक नभी दें उनको, साक्षात रूप में दर्शन करना बड़ा भारी कठिन। किंतु ब्रजवासियों के कौन है ये? वही जो अंश परमात्मा है, परमात्मा का अंशी है कौन? गर्भोदशाई, गर्भोदशाई के अंशी कौन है?
कर्णाब
देसाई। इनके अंशी कौन है? महासंकर्षण। उनके अंशी कौन है? मूल संकर्षण। उनके मूल कौन है?
बलदेव
प्रभु। बलदेव प्रभु के मूल कौन है?
कृष्ण
स्वयं। ये कृष्ण स्वयं, परमात्मा की तो बात छोड़ो, परमात्मा कृष्ण स्वयं उनके सामने आकर के उनके साथ में बातचीत करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, उनको प्यार करते हैं अपने साक्षात रूप से। उनके संबंध में गोविंद जी, गोविंद माने गोपी, गोपियों की बिंद, बिंद माने आनंद देने, गोपियों को आनंद देते हैं कौन? ये कृष्ण। सब भक्त लोगों को कृष्ण आनंद देते हैं, किंतु डायरेक्ट रूप में नहीं, अपने अंश के रूप में और सब स्फूर्ति में। किंतु ये गोविंद स्वयं कृष्ण बन करके, मदन मोहन बन करके, गोविंद गोपीनाथ बन करके ब्रज में गोपियों के साथ में नृत्य किया, उनकी करुणा चाही, उनको मनाया, उनको कोई खिला रही है, कोई उनका हाथ बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है उस गोविंद को। इस प्रकार से उनके माधुर्य का आस्वादन किया कौन? उन गोपियों ने। ब्रह्मा इत्यादि नहीं कर सकते, परमात्मा के रूप में नहीं करेंगे। उद्धव जी ब्रजवासियों की श्री कृष्ण के लिए जो व्याकुलता दर्शन किया, कैसा व्याकुलता दर्शन किया, मानो एक मिनट नहीं देखने से मर जाएंगी, ऐसा किसी को नहीं देखा। उद्धव जी पहले समझते थे हमारे बराबर का कोई भक्त नहीं है विश्व में, मैं कृष्ण का सबसे प्रिय हूं। कृष्ण ने स्वयं कहा हमसे थोड़ा सा भी न्यून उद्धव नहीं है। आज जब ब्रज में गए, सोचा जो मैं कृष्ण को छोड़कर के कैसे रहूंगा। कृष्ण ने उनको किसी तरह से इंगित किया जो देखो मैं वहां पर ही संपूर्ण रूप हूं, यहां पर नहीं। तुम जब ब्रज में जाओगे तो हमको यहां भूल जाओगे, उन गोपियों के सानिध्य में। बात ऐसा ही हुआ, जब गए भूल गए कुछ दिनों तक, इसलिए संपूर्ण रूप से कृष्ण वहीं पर है और विशेष करके गोपियों के पास में है। उनकी कैसी व्याकुलता, यदि एक मिनट ना दर्शन करें ना कृष्ण का, एक मिनट, एक सेकंड, तो वह एक सेकंड कैसा लगता है, मानो जुग जुग बीत गया। और जब दर्शन करती हैं तो यदि जुग जुग भी दर्शन करे ब्रह्म रात्रि माने जुग, तो मालूम होता है एक क्षण,
क्षण कल्पत्त कल्प क्षण,
ऐसा किसी को नहीं देखा जाता। विशेष करके जैसे उन्मादग्रस्त हो गई थी महा उन्मादिनी, किसी को ऐसा नहीं देखा। सीता जी को रामचंद्र जी ने छोड़ दिया, अशोक वन में गई या वाल्मीकि के आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में सदा के लिए छोड़ दिया था, किंतु वहां जाकर के अपने पुत्रों को, तो पुत्र तो थे ही, उनको खिलाती पिलाती रहती थी, बड़े दुख से रहती थी, किंतु रहती थी ना, पागल नहीं हुई। लंका में भी पागल नहीं हुई, और गोपियां कैसी हो गई, महा उन्माद ग्रस्त हो गई, कैसे चलना चाहिए, बोलना चाहिए, ये सब कुछ वो भूल। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि उनका देख करके उन्होंने निश्चय किया जैसे ऐसा प्रेम तो विश्व में कहीं नहीं है गोपियों के अतिरिक्त। कैसा भगवान का विचार होता है, तीन चीजों से, स्वरूप, स्वरूपानंद, उनका स्वरूप क्या है, उनका ऐश्वर्य क्या है, माधुर्य क्या है, तीन चीजों को मिलाकर के भगवान की भगवत्ता का विचार किया जाता है। सवेरा हो गया, तीन चीजों को विचार लेकर क्या होता है, स्वरूप माने क्या, भगवान में एक स्वरूपानंद है जो किसी में नहीं है, भगवान में ऐश्वर्य है जैसे स्वावृत्ति का उदय होता है, ऐसा किसी में नहीं है। चाहे तो एक सेकंड में पृथ्वी को लय करके ध्वंस करके कोटि कोटि ब्रह्मा इत्यादि का भी सृजन कर दे, और उनमें अद्भुत माधुर्य है। माधुर्य किसको कहते हैं, भगवान की चेष्टा, लीला, हंसी, उनके विचार, उनके अंग इत्यादि में अत्यंत चारुता, मनोहरता हो जो सबका मन हरण कर लें, इसको कहते हैं माधुर्य। आनंद भी रहेगा, ऐश्वर्य भी रहेगा, किंतु ऐसा माधुर्य हो जो सबको मुग्ध कर ले, तब तो वो माधुर्य है। ऐश्वर्य और आनंद ना रहे और माधुर्य रहे, ये लौकिक बात हो गई, संसार के ऐसा ही संसार है, उसमें माधुर ये नहीं, स्वरूपगत आनंद नहीं है और उसमें ऐश्वर्य नहीं है भगवान जैसा। लड़का किसी कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको लड़का नहीं है, घर में रोता नहीं है, उसको प्यार नहीं करते, तो ये भी भगवान का प्रेम हो जाएगा? ये नहीं है। उसमें भगवान कृष्ण जैसे ऐश्वर्य है, स्वरूप आनंद है और साथ साथ में माधुर्य है, ये भगवत्ता का सार है, जिसमें माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। गोपियों में ये चीज है। ये लोग कैसी हैं? मुनि लोग चाहते हैं ऐसा ही भाव। मुनिगण सुखदेव गोस्वामी शंकर जी, विषम पितामह जी, जब ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख है, किंतु वो भाव नहीं आता। लक्ष्मी जी चाहती उनमें भी भाव नहीं आता, किंतु गोपियों में ये सीमा तक ये रूढ़ भाव। ये लोग चाहने पर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? भगवान को देख करके उनके माधुर्य को आस्वादन करने के लिए कुछ चीज की जरूरत है, वो अधिकार है, योग्यता कहलाता है। कृष्ण रंगभूमि में आए कंस से के दरबार में, बुलाया था मारने के लिए। वहां पर साधारण लोग भी थे, विशेष लोग भी थे, साधु लोग भी थे, नंद बाबा भी थे, यशोदा वसुदेव देव जी भी थे, जदुवंशी लोग भी थे। जो जो जैसा अधिकार है कृष्ण को वैसा ही देख रहा है। कंस ने देखा साक्षात
मृत्यु भोजपते साक्षात।
और जोगियों ने क्या देखा?
तत्त्वं परं योगिनां,
तत्व के रूप में देखा। मल्ला नाम अश्विनी जो चारणमूर्ति से थे उनके लिए कैसा? एकदम वज्र के समान। साधारण लोगों ने देखा क्या? नर बालक। सखाओं ने देखा क्या? स्वजन, हमारा मित्र है। नंद मामा ने क्या देखा?
स्वपित्रो शिशु,
अपना पुत्र देखा। जो जैसा है उसी रूप में देख रहा है कृष्ण के प्रति। सभी लोग एक रूप में नहीं देखेंगे। जिस प्रकार से गोपियां देख रही हैं, ऐसा सभी लोग नहीं देख सकते। अब वहीं पर कंस है, उनको अपना शत्रु मान करके उनसे युद्ध इत्यादि करना चाहता है, उनको मारना चाहता है, और गोपियां प्रेम में भर जाती हैं उनको देख करके। उद्धव जी ये कह रहे हैं कि गोपियों में क्या चीज है? आस्वादन करने की क्षमता है। क्या है? महाभाव उनमें है। यदि कृष्ण के प्रति भक्ति रहती है तो हम भी कुछ कुछ आस्वादन कर सकते हैं, और भक्ति यदि नहीं है तो कुछ नहीं। भक्ति ही मूल चीज है। यह भक्ति अपनी चरम सीमा तक किसमें है? गोपियों में, महाभाव इत्यादि। इसलिए गोपियां इनको कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती हैं। तो यह होगा कहां? कहां से होगा? श्रवण से होगा। तो जिन लोगों को हरि कथा में रुचि ही नहीं हुई, केवल इधर उधर कामों में ही रुचि है, देह और दैहिक वस्तुओं में या साधारण चीजों में या संग सिद्धा भक्ति में, आरोप सिद्धा भक्ति में, अर्थात मिश्रा भक्ति में, शुद्ध भक्ति में नहीं है, तो कृष्ण का ये सब चीजें कैसे आस्वादन कर सकते हैं? कभी संभव नहीं। इसलिए शास्त्रों को श्रवण करना ही मूल चीज है। कोटि कोटि ब्रह्मा जैसा भी जीवन मिल जाए, यदि भागवत के इन सब चीजों का श्रवण का यदि सुयोग न हो और उसमें लोभ न हो सुनने का, तो क्या होगा? गोपियों की महिमा का, कृष्ण की भक्ति की महिमा तनिक भी सुनने में नहीं जाएगी, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? वही कर्म ज्ञान योग, संसारिक उपकार और इसी के मेल। इसलिए जगत के लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े अस्पताल बनाते हैं, बड़े बड़े शिक्षागार खुलते हैं और सब काम करते हैं, किंतु भक्ति में, हरि कथा में रुचि नहीं होती। और जिनको भक्ति रुचि होगी ना, तो भक्ति का विकास यानी ये भक्ति कैसे होती है, क्यों होती है, किस प्रकार से होती है, फिर ये भक्ति कैसे भावावस्था में आती है, फिर उसे प्रेम होता है, प्रेम का सार है महाभाव, ये गोपियों का स्वरूप है, तब उनका आस्वादन को आ। इसलिए जिनको हरि कथा में रुचि नहीं है, ऐसे भागवत में रुचि नहीं है, हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों में रुचि नहीं है, महाप्रभु के जो विषय हैं जिन्होंने बतलाया है, हमारे रूप गोस्वामी के हृदय में स्फूर्ति किया, इनमें तरफ में रुचि नहीं है, तो जीवन ही व्यर्थ है। ब्रह्मा का आयु लाभ करके भी या ब्रह्मा बन करके भी कोई लाभ नहीं। इसलिए हमें क्या उचित है, हरि कथा श्रवण करना। इसके श्रवण से गोपियों की ऐसी महिमा, जो कृष्ण गोपियों के गले में हाथ लगा करके झूल गए, जो लक्ष्मी जी को नसीब नहीं हुआ, जो कि रुक्मिणी सत्यभामा के लिए नसीब नहीं हुआ, जो कि बैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी जी की और भी संगीने हैं, नारायण की
श्री भू नीला
आदि और भी बहुत बतलाया गया,
बहुत बतलाया।
लक्ष्मी जी का ही नहीं हुआ, वो बेलबन में तपस्या करके उनको ये नहीं मिला, तो और लोगों की तो बात क्या, जिनकी गंध कैसे है, सोने का कमल उसमें सुगंध भरा रहे, ऐसी जो रहने वाली श्री भू इत्यादि है उनमें ही नहीं है, रुक्मिणी सत्यभामा तक में भी नहीं है, केवल मात्र गोपियों में है। इन गोपियों की कथाएं नहीं यदि सुना जाए, भक्ति का विकास का ये सब बातें नहीं सुना, दिन रात उसी में रहा जाए, तब तो भक्ति हो सकती है, और यदि इनको नहीं सुना जाए तो ये साधारण भक्ति का काम नहीं, वो उसको तो वही वैधि भक्ति के अत्यंत निम्न स्तर से श्रद्धा से लेकर के चलना पड़े, उसमें भी कोई आकांक्षा यदि हमारी कोई रही तो वो भक्ति नहीं होगी, तो फिर ये लोभ वाली भक्ति की तो बात ही क्या, लोभ वाली भक्ति ही ब्रज में हमको ले जाएगी, ब्रज भक्ति दिलाएगी, ये वैधि भक्ति तो बैकुंठ तक ले जाएगी, वो भी यदि शुद्ध शुद्ध हम करें, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, कोई प्रकार की कामना वासना न हो, कर्म और ज्ञान योग तपस्या व्रत इत्यादि के द्वारा ढकी हुई ही न हो, निरंतर तैल धारावत अविच्छिन्न गति से कृष्ण के चरणों में लगने वाली भक्ति हो। ये भक्ति को आरंभ किया प्रहलाद महाराज जी से और शेष किया गोपियों के, ये सब अनुकूल अनुशीलन के ये तारतम्य है। इस तरह से गोपियों जैसी भक्ति जिसको चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए थे, इधर थोड़ी सी भी रुचि लोभ हो जाए तो हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाए। बस आज यही वंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, श्री नीलाद्रीनाथ की जय, जय नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद भक्त गण के सबके श्री महाराज प्रभुपाद की जय, नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्त सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद श्री श्रीमद गुरुकृष्णदेवा जी महाराज की, नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद श्री श्रीमद सच्चिदानंद भक्त ठाकुर की जय, नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद श्री श्रीमद वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ बाबाजी महाराज की जय, जय श्री बलदेव विद्याभीषण प्रभु की जय, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर की जय, जय श्री सनातन श्री गोपाल भट्ट दास गुणनाथ गोस्वामी ठाकुर की जय, जय स्वरूप दामोदर गोस्वामी की जय, जय रामानंद हरदास ठाकुर की जय, प्रेम सखा नित्यानंद श्रद्धित गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तबिंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, द्वादश भवन की जय, द्वादश उपवन की जय, राधा कृष्ण गोप गोपी राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन गिरी धार की जय, गंगा जमुना जी की जय, क्षेत्र मंडल की जय, जय श्री टोटा गोपीनाथ की जय, जय साकी गोपाल की जय, रमुना जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, सिद्धा बकुल की जय, हरदास ठाकुर की जय, नीलाचल वासी भक्तबिंद की जय, जिदन निस्वामी भक्त वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय,
जन्म मरण मरण।
गति नहीं आरा जना में मरा ने मरा गति नहीं जाना में मारा ने गोती मार नहीं मोरा कालिंदी राखुल केली कदम्बेर बन कालिंदी राखुल केली कदम्बेर बन कालिंदीरा कुले केली कदम्बेरा बना रतन बेदीरा परे बसा दुजाना कबेरा रतन बेदीरा उपर बसा दुजाना रतन बेदीरा परे बसा दुजाना रतन बेदीर परे बसा बधु जन कातिया मालतीर माला दुहार मालतीर माला दीब दुहार गले गातिया मालतीर माला दीब दुहार गले अधर तुलिया दुआ कपूर कमले कबे अधर तुलिया दुआ कर्पूर तंबूले अधर तुलिया दुआ कपूर तंबूले कबे अधर तुलिया दुआ कर्पूर तांबूले श्याम गौरी अंगे दीब छुआ चंदनेर गंध श्याम गौरी अंगे दीब छुआ चंदनेर गंध श्याम गौरी अंगे दुआ दुआ चंदनेर गंध श्याम गौरी अंगे दीब छुआ चंदनेर गंध चामर ढुलावहरी दुमुख चंद्र कबे चामर ढुलाव कबे देखी मुख चंद्र श्री कृष्ण विशाखा राजी जत सखी बृंद ललिता विशाखा राजी जत सखी बृंद ललिता विशाखा ललिता विशाखायादि जत सखी बृंद आज्ञा करिब सेवा चरणारविंद आज्ञा करिब सेवा चरणारविंद आज्ञा करिब सेवा गाय करीब सेवा चरणार बिंद आर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास प्रार्थना करे सदा श्री केशव दास प्रार्थना करे सदा श्री केशव दास সেদিন আমার কবে বা হবে সেদিন আমার কবে বা হবে কল সেবায় অধিকার পাব সেদিন আমার কবে বা
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ये दोनों एक साथ में नहीं करने से भगवान का नाम नहीं होगा, है ना? ऐसी धारणा आपकी कैसी धारणा है? कुछ कुछ है ऐसे, तो कुछ कुछ पूरा नहीं होने पर नहीं, ऐसी धारणा एकदम गलत है। स्वामी जी ने किसी हाल से वैसा पाश्चात्य देशों में ऐसा किया है, किंतु हम लोग बड़ा प्रवास से देख रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी का देखिए, इनसे बड़ा बढ़ करके कौन कीर्तनिया होगा, बल्कि आप भी जगत के राज्य के भगीरथ हैं। जैसे आपको भगीरथ जी लाए थे, वैसे ये नहीं आते और उसके बाद में प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं आते तो ये धारा विलुप्त हो जाती। स्वामी जी कहिए और लोग कहिए, सब इनकी हाथ हैं, भुजाएं हैं, लंबी लंबी तक जा करके पूछा। उन्होंने लिखा जे गाय गोराचंद
मधुर स्वर
मधुर स्वर, बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये नाम हुआ कि नहीं? आके उसे कम हो गया, फिर आधा दे करके दिया, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गाय गुराचंद मधुर स्वर, तो फिर ये गड़बड़ हो गया। आप दो बार सांस क्यों लेते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दो बार सांस लेने से तो वो गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया वो। और हरे के साथ में वो राम लगा करके पूरा बोलना पड़ेगा एक साथ में, तो ये कैसे बोलेंगे? हरे राम करते हैं ना, तो फिर दोनों मिला कैसे? तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। ऐसा मत सोचिए, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, हम लोगों में भी अब ऐसा कुछ लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वो गाते हैं ऐसा तो हम लोगों को भी पूरा उतना ही करना चाहिए। जब जैसा हम लोग भी वैसा करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का, प्रभुपाद जी का, उसके पहले हम लोगों के गौड़ीय वेदांत समिति में प्रभुपाद जी की धारा के समय जो कीर्तन करने वाले थे, बड़े बड़े कीर्तनियां, उन लोगों को देख मैं तो एकदम प्रारंभ में हम लोग आए हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी के,
जगन्नाथ वल्लभ बाबा जी, जगन्नाथ वल्लभ
बाबा जी बहुत कीर्तनियां थे, इतना लंबा उनका श्वास था और इतना सधा हुआ गला था,
कीर्तन आखर द्वार को बहुत एक्सपर्ट।
मोहनी प्रभु से प्रभुपाद जी का कौन कीर्तनिया होगा? मोहनी प्रभु एक थे, हम समझते हैं कि सारे भारत वर्ष में वैसा कीर्तनिया प्रभुपाद जी के समय में थे, गुरु जी के साथ में पीछे से रहते, इतना सुंदर कीर्तनिया और भावपूर्ण कीर्तन जब करते थे आंख में आंसू आ जाता था। वृंदावन में परिक्रमा करते हुए चलते थे ना, ब्रज के भावों को लेकर के, और ऐसा सुंदर कीर्तन करते, अपने रोते सबको रुलाते। तो उसमें आधा एक बार करेंगे तो आधा पीछा, और कभी कभी सबको एक साथ में भी। इसलिए ऐसा कभी मत समझना जो आधा कर रहे हैं तो ये आधा हो गया और वो पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, दोनों को ठीक समझना चाहिए। जैसे हमारी परंपरा धारा आई है उस रूप में हम चले। दूसरी बात, तुमने खिचड़ी कर दिया, खिचड़ी मैंने हम लोगों का गौड़ीय वैष्णव का ये जो स्वर और उसमें इस कौन का भी स्वर मिला दिया मिला है ना, क्या जय
जामुनती रवनाचारी जसोदानंद ने भजे नगर जामुनती रवनाचारी में गंदोल
कर, हम लोगों का धारा के अनुसार में कीर्तन करना है। उन लोगों का उद्धार है और हम लोगों की धारा में चलता है, उद्धार लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हम लोगों का स्वर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जसोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन अथवा जय जामुनती रवनाचारी जय कुंज बिहारी, इस उससे हम लोग का वादा उसका आधा इसको लेने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि हम लोगों का जो स्वर है नरोत्तम ठाकुर का है, उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जैसा और कोई कीर्तनिया जन्म नहीं लिया। कीर्तन किसको कहते हैं? कीर्तन माने कीर्तन किसको कहते हैं? करताल बजा करके स्वर के साथ में जो कीर्तन करता है उसको कीर्तन कहते हैं? नहीं, ये गलत धारणा। भगवान का नाम रूप गुण लीला चाहे मृदंग हो चाहे जैसे हो, मुख से उच्चारित होने पर उच्चारण होते ही बस वो कीर्तन। कीर्तनिया में भागवत में सबसे अधिक कीर्तनिया बतलाया किसको? सुखदेव गोस्वामी को। ये कीर्तन के द्वारा भगवान को पाया था। तो मृदंग लेकर के वन जंगल में चलते थे ना, क्या करते थे? ये भागवत का कीर्तन किया। इसलिए मत समझना चाहिए जैसे केवल मृदंग ताल और स्वर के साथ में भगवान का जो कीर्तन है वही संकीर्तन है, ऐसा नहीं। जो हृदय से शुद्ध हृदय हो करके भगवान का नाम रूप गुण लीला सबके हृदय में अवतरित करा देते हैं, ये सबसे रूप गोस्वामी बहुत बड़े कीर्तनिया हैं। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े कीर्तनिया हैं, जीव गोस्वामी, ये सब सर्व गोस्वामी बड़े कीर्तनिया हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज बड़े कीर्तनिया थे। हम लोग जैसे दुष्ट लोगों को भी पकड़ करके और इधर भक्ति में लगा दिया, ये कीर्तनिया है। जिस कीर्तन से लोगों का चित्त द्रवित न हो, जिसे आत्ममंगल न हो, भावना न आए, मशीन के रिकॉर्ड की भांति वो कीर्तन हो रहा है, इससे क्या होगा? होगा कुछ? जैसे আমি তো দুর্জন রেখা নেই উতরি তো কীর্তন কাজ হুয়া অভি মহারাজ জি নে কীর্তন কিয়া কতনা সুন্দর কীর্তন ও কীর্তন কে সাথ সাথ মে ও ভাব আকাঙ্ক্ষা লোভ ইত্যাদি রহনি চাহিয়ে এসা হি হামারা হো আপনে কীর্তন সে দূসরো কে কীর্তন সে উতনা লাভ নেই হোতা হে জিতনা কি সিদ্ধ মুক্ত মহাপুরুষো কে কীর্তন কে দ্বারা ভগবান প্রসন্ন হোতে হে হম মান লে কে এক নয়া বানায়া জেসে বানায়া হমনে নহীঁ নহীঁ ও তো সব ভরি হে আজকাল এক কীর্তন চলতা উস দিন উড়িয়া বালে ভি গায়ে থে রাধা নাম কি নথনি গড়াই রে উনকা আচার বিচার দেখিয়ে তো নথনি গড়ানা কিসো কহতে হ্যাঁ শ্বাস প্রশ্বাস মে সব সময় রাধা নাম রাধা জি কি মহিমা সমঝে উনকে প্রতি দাসী কা ভাবনা আয়ে কর রহে হ্যাঁ দুর্গা পূজা আর নথনি গড়াই রে রাধা নাম হো গিয়া ইসলিয়ে ও সব ভাব ভি আনে চাহিয়ে কীর্তন করতে আন্ডারস্ট্যান্ড সমথিং ইফ ইউ আর ডুইং কীর্তন অফ কৃষ্ণ নাম এন্ড এনি কীর্তন বি শুড বি বাট বি তদাত্ম উইথ দ্যাট তদাত্ম ইউ নো বি তদাত্ম I don't know.